बारहवां चैप्टर ऐतिहासिक ज्ञान का स्वरूप कौमा विषयगत विषय वस्तु और पद्धति। बारह चैप्टर ऐतिहासिक ज्ञान का स्वरूप विषय वस्तु और पद्धति इन्वर्टेड कौमा में विज्ञान एवं इतिहास। विज्ञान की विशिष्ट पद्धति के जन्म ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में कई विवादों को जन्म दिया। शुद्ध विज्ञान के क्षेत्र में न्यूटन ने जगत में एक व्यवस्था के दर्शन किए जिसकी अभिव्यक्ति सभी कालों तथा देशों में समान रूप से कार्य करते हुए प्राकृतिक नियमों के रूप में होती है। न्यूटन के पूर्व ही 17वीं शताब्दी में विज्ञान की आधुनिक परिभाषा स्पष्ट हो चुकी थी। विज्ञान की पुरानी पद्धति विशुद्ध तर्कात्मक थी, परंतु इस युग में प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुभव और तर्क दोनों के समन्वित रूप में जन्मी वैज्ञानिक पद्धति को स्वीकार किया गया। इससे सार्वभौमिक नियमों का प्रकाशन हुआ। यह स्पष्ट किया गया कि वैज्ञानिक का भविष्य कथन कार्य कारण नियम पर आधारित होता है। विद्वानों ने इस कार्य कारण नियम की उद्भावना का प्रयोग मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के अध्ययन में किया है। इसीलिए यह प्रश्न उठाया गया कि क्या इतिहास लेखन भी विज्ञान के समान विषयनिष्ठ या विषय प्रधान हो सकता है, परंतु इतिहास में विज्ञान की विशिष्ट प्रयोगात्मक सत्यापन विधि का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इतिहासकार का उद्देश्य इतिहास लिखना है न कि इतिहास बनाना। इतिहासकार की दृष्टि तथ्यनिष्ठ होने के साथ साथ सत्यनिष्ठ भी होती है। इस अर्थ में इतिहास विज्ञान नहीं है। यदि इतिहास और विज्ञान में कोई समानता है तो वह है दोनों का यथार्थता पर आग्रह। प्रस्तुत अध्याय में विस्तार से क्या इतिहास विज्ञान है अथवा कला जैसे प्रश्न के अतिरिक्त समाज विज्ञान से इतिहास का क्या संबंध है, क्या वास्तविक समाज विज्ञान संभव है जैसी समस्याओं तथा इतिहास की ज्ञान पद्धति से संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया है। विज्ञान की परिभाषा। साइंस शब्द का पुराना अर्थ सैद्धांतिक ज्ञान था। इतिहास लेखन उस समय प्रायः साहित्य के अंदर रखा जाता था। 17वीं शताब्दी से क्रमशः विज्ञान की आधुनिक परिभाषा स्पष्ट हुई है। इस परिभाषा के अनुसार विज्ञान की विशेषता उसकी विषय वस्तु में न होकर उसकी पद्धति में है। विज्ञान की पुरानी पद्धति विशुद्ध तर्कात्मक थी, स्वतः सिद्ध अथवा बुद्धि सिद्ध अभ्युपगमों के आधार पर अनुमान के द्वारा जिस प्रकार गणित विद्या का प्रतिपादन होता है उसी प्रकार सब विज्ञान की विधाओं का होना चाहिए। ऐसी मान्यता प्लेटो और अरस्तु से 17वीं शताब्दी में डेकार्त और स्पिनोजा तक प्रचलित रही। डेकार्त ने दर्शन शास्त्र को एवं स्पिनोजा ने आचार शास्त्र को गणित के समान तार्किक रूप देने की चेष्टा की, किंतु इसी युग में बेकन एवं अन्य प्रत्यक्षवादी अंग्रेज विचारकों ने विज्ञान के विकास को इंद्रिय प्रत्यक्ष पर आधारित बताया। तब से प्रत्यक्ष और अनुमान, अनुभव और तर्क इन दोनों को समन्वित रूप में विज्ञान की पद्धति स्वीकार किया गया है। वैज्ञानिक पहले एक परिकल्पना प्रस्तुत करता है, फिर प्रयोग द्वारा उसकी अनुभव से संगति निर्धारित करता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष का उपयोग विज्ञान में बौद्धिक कल्पनाओं के उत्पादन एवं समर्थन में होता है। प्रत्यक्ष मात्र से सिद्धांत नहीं होता और न तर्क मात्र से व्यवहारोपयोगी सिद्धांत का समर्थन हो पाता है। दोनों का ही संवेत प्रयोग विज्ञान को जन्म देता है। कल्पना और सत्यापन की इस परोपकारी प्रक्रिया के आधार पर विज्ञान निरंतर प्रगति करता है। उसके नियम वाक्य होते हैं जो कि भविष्योक्ति का आधार बनते हैं। वैज्ञानिक भविष्योक्ति एवं सोपाधिक या शर्तबंद या संभावनात्मक वचन होता है। उदाहरण के लिए इस वातावरणिक दबाव में यदि तापमान 100 डिग्री हो तो पानी उबलने लगेगा। यहाँ भविष्य वचन निरपेक्ष नहीं है, बल्कि वह एक कार्यकारण नियम के दो पक्षों का संबंध व्यक्त करता है। वैज्ञानिक नियमों की संभावनात्मकता या प्राय आधुनिकता का स्वीकार अपेक्षाकृत एक नया विकास है। इतिहास एवं विज्ञान में भेद। इसके विपरीत इतिहास में न इस प्रकार की भविष्योक्ति संभव है, न सार्वभौम नियमों की उपलब्धि, न उसमें प्रयोगात्मकता का कोई स्थान है, न विशुद्ध कल्पना का। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, वैज्ञानिक भविष्य कथन कार्य कारण नियम पर आधारित होता है और सापेक्ष वचन तथा हेतु हेतु मध्य भाव में व्यक्त होता है। मानव जीवन में व्यापक और महत्वपूर्ण कार्य कारण नियमों की उद्भावना का प्रयत्न मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादि पिछले 100-150 वर्षों से निरंतर करते रहे हैं, किंतु यह कहना कठिन है कि उनके प्रयासों ने आशानुरूप सफलता दिलाई है। मनुष्य व्यक्ति संपन्न प्राणी है और व्यक्तित्व विशिष्ट और स्वतंत्र का का घोतन करता है। जड़ जगत में और पशु जगत में स्वातंत्र अथवा व्यक्तित्व उपलब्ध नहीं होता। जैसे एक कौए का जीवन है, वैसे ही शेष सब कौओं का सभी समान निरूपण के अनुसार समझे जा सकते हैं, किंतु मनुष्यों में प्रत्येक का निराला चरित्र होता है और परिचित चरित्र वाले व्यक्तियों में भी प्रत्येक अतर्क स्वतंत्र से संयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में यह विस्मयकारी नहीं है कि मनोविज्ञान के नियम जहां अपूर्व और मात्रा सम्मत होते हैं, वहां वे प्रायः आदि भौतिक तथा शारीरिक सिद्ध होते हैं। मनुष्य के स्वभाव का वैचित्र्य और स्वतंत्र साहित्यकारों के लिए सतत आकर्षण का विषय रहा है और इतिहासकार उसे वैज्ञानिक नियमों के द्वारा सबोध घटनावली के रूप में कभी समझ सकेंगे, यह अत्यंत संदिग्ध है। इस पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास का विषय व्यक्ति जीवन नहीं किंतु समाज का जीवन है। समाज के जीवन में व्यक्तियों की विचित्रताएं पारस्परिक विरोधों से रद्द हो जाती है। इसीलिए जहां व्यक्ति जीवन के इतिहास में नियम न दिखाई दे, वहां सामुदायिक जीवन में उसका प्रमाण अनायास उपलब्ध होता है। उदाहरण के लिए हम यह नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति कब विवाह करेगा या आत्महत्या करेगा, किंतु हम यह संभावनात्मक रूप में कह सकते हैं कि इस नगर में अगले वर्ष प्रायः कितने व्यक्ति विवाह करेंगे अथवा आत्मघात करेंगे। व्यक्ति जीवन के स्वतंत्र होते हुए भी सामुदायिक जीवन में सांख्यिकीय और संभावनात्मक नियमों से परिचालित होता है। वे नियम ही समाज विज्ञान का आधार है। इतिहास भी समाज विज्ञान के रूप में इसी प्रकार के नियमों का उपयोग कर सकता है, किंतु इस निरूपण में यह भुला दिया गया है कि इतिहास का विषयभूत सामाजिक मानव एक रस और अपरिवर्तनीय सत्ता नहीं है। सामाजिक संस्थाएं, रचनाएं और मान्यताएं निरंतर बदलते रहते हैं और इस परिवर्तन के साथ ही उनके तात्कालिक संभावनात्मक नियम भी अपरिवर्तित नहीं रहते। दूसरे इतिहास का आग्रह आवर्तिशील समान घटनाओं पर न होकर उन घटनाओं पर होता है जो कि अपूर्व और अद्वितीय होती है। इतिहासकार उन समान बातों से संतुष्ट नहीं होता जो कि क्रांति मात्र अथवा युद्ध मात्र की व्याख्या में बहुधा कही जा सकती है। वह यह जानना चाहता है कि 1789 में प्रारंभ फ्रांस की क्रांति अथवा 1917 में प्रारंभ रूस की क्रांति के क्या विशिष्ट कारण थे। इस तरह के व्याख्यात्मक ज्ञान को सामान्य नियमावली का रूप नहीं दिया जा सकता। इतिहासकार सामान्य नियमों का उपयोग कर सकता है, किंतु वह उन नियमों का प्रयोग कर विशिष्ट घटनाओं को समझना चाहता है। इतिहास की विषय वस्तु विशेषतात्मक होती है, न कि सामान्यात्मक। वस्तुतः क्रांति युद्ध आदि के सामान्य नियम खोजना भी असंभव है। क्रांति युद्ध आदि कोई एक घटना नहीं है, बल्कि असंख्य विभिन्न घटनाओं के अतर्कित समूह हैं। प्रत्येक क्रांति में ये असंख्य घटक एक निराले ढंग से समायोजित होते हैं। यदि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा इस घटना समूह के अंदर से समूची क्रांति आदि के कारण खोजे जाएं, तो तो क्रांति के जितने दृष्टांत अपेक्षित होंगे उतने इतिहासकार को उपलब्ध नहीं होते। किसी युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व उससे न्यूनाधिक रूप में संबद्ध घटनाएं और उनके परस्पर संबंध इतने अधिक होते हैं कि उनमें यह विवेक कर पाना कि कौन से तत्व आवश्यक या नियत पूर्ववर्ती है और कौन से आगंतुक या अन्यथा सिद्ध, यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि उसी प्रकार के अनेक अन्य दृष्टांत उपलब्ध न हों। इन घटनाओं के ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रचलित परंपराओं को हम देखें तो दूसरी बात सामने आती है। घटनाओं के कारण खोजने और बताने में इतिहासकार घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करते हैं। क्यों के प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर वे कैसे का उत्तर देते हैं, मानो वे यह मानकर चलते हैं कि इस संदर्भ में सामान्य कारण नियम प्रासंगिक है। जो प्रासंगिक है वह है प्रदत्त देश काल में सुविदित कारणों का व्यापार और उनका एक दूसरे पर प्रभाव डालना। मनुष्य का सार्वभौम स्वभाव सामाजिक जीवन की नाना अनुप्रक्रियाओं से व्यक्त होता है और इसी अनुस्तर पर उसके संभावनात्मक नियम विदित होते हैं। उदाहरण के लिए बैर में मनुष्य कैसा आचरण करते हैं, सहयोगिता की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है, मतदान या बाजार में क्रय विक्रय का व्यवहार कैसे प्रवृत्त होता है, इत्यादि प्रक्रियाएं आवृत्तिशील और न्यूनाधिक मात्रा में नियम वर्ती होती हैं। इस प्रकार के न्यूनाधिक मात्रा में नियम संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यवहार खंडों में संस्थाओं का निर्माण होता है, जैसे चापों से वृत्त का। अनुप्रक्रियाओं के ज्ञान के रूप में इस प्रकार के खंड ज्ञान ही समस्त मानव समाज के प्रतिभास को समझने के प्रसंग में इतिहासकार को उपलब्ध होते हैं। उसकी वैज्ञानिक के रूप में सहज प्रवृत्ति होती है बृहदाकार सामुदायिक घटनाओं को इस प्रकार की आणविक घटनाओं में विश्लेषित कर समझने की। वह इतिहास के अनावृत्तिशील घटना समुच्चयों अथवा संघटनाओं के अपने महत्स्तरीय नियमों की खोज न कर बड़ी घटनाओं को छोटी घटनाओं के माध्यम से समझना चाहता है। इसमें एक विशेष कारण उसको अनिवार्य रूप से प्रेरित करता है और वह है ऐतिहासिक साक्ष्य का स्वरूप, जिसके विषय में नीचे चर्चा की जाएगी। किंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की विश्लेषण पद्धति एक प्रकार के अभ्यसन या अभिमूल्यन की प्रक्रिया है, जिसमें ऐतिहासिक व्यापारों के प्रतीति सिद्ध रूपों की विशेषता खो जाती है। इस प्रक्रिया में विश्व युद्ध बहुत से व्यक्तिगत कलहों का जोड़ बन जाएगा। अनावृत्तिशील सामुदायिक घटनाओं को अपना विषय बनाने के कारण इतिहास जिन नियमों के परिज्ञान से वैसध्य लाभ कर सकता है वे महत्स्तरीय होंगे। ऊपर यह तर्क दिया गया है कि अणुस्तरीय माइक्रो लेवल नियमों के संश्लेषण से महत्स्तरीय मैक्रो लेवल घटनाओं की अवस्था बोधगम्य नहीं होती है। यदि किसी समुदाय में आत्महत्या अथवा विवाह के घटने में नियम ढूंढना है तो वह तत्व संबंधी सामाजिक आंकड़ों के द्वारा ही संभव है। आत्महत्या के मनोविज्ञान और सामाजिक कारणों का ज्ञान आत्महत्या के घटित होने का कोई मात्रिक नियम नहीं दे सकता। भीड़ में उसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों के मन का यह परिज्ञान यह नहीं बताएगा कि भीड़ में उसके अंतर्गत समस्त व्यक्तियों के मन का परिज्ञान यह नहीं बताएगा कि भीड़ कैसे संचालित होगी। महत्स्तरीय आवृत्तिशील सामाजिक घटनाओं के नियम कदाचित सामाजिक आंकड़ों से सांख्यिकीय नियमों के अनुसार निकाले जा सकें, ये ही समाज वैज्ञानिक नियम होंगे। इस संदर्भ में व्यक्ति का आचरण अणुस्तरीय होगा। इतिहास में जो अनावृत्तिशील घटनाएं व्यक्तिक और सामुदायिक दोनों ही रखी जा सकती है, व्यक्ति धन अथवा शक्ति के लोभ से कूट व्यवहार करते हैं। समाज में अपराधों के आंकड़े कुछ न कुछ नियम प्रदर्शित करते हैं, किंतु इससे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्लाइव और हेस्टिंग्ज के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का कूटनीतिक इतिहास पूरा समझा नहीं जा सकता। इन अनुघटकों पर ध्यान देते रहने से अंग्रेजी कूटनीति बहुत से असंबद्ध कारणों का एक जटिल संयोग मात्र सिद्ध होती है। इस अवस्था में कुछ इतिहासकारों का मत है कि ऐतिहासिक घटनाओं के अपने महत्स्तरीय नियम होते हैं। स्पेंगलर या कुछ हद तक टाइनबी इसके दृष्टांत हैं। इन्होंने समूची सभ्यताओं के जीवन नियम निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। मार्क्सवादी एक और इतिहास के महत्स्तरीय विशिष्ट नियम मानते हैं जो उन्हें एक नियत युगानुपूर्वी का परिचय देते हैं, किंतु दूसरी ओर वे इन नियमों को आवृत्तिशील सामुदायिक आर्थिक व्यापार का नियत कार्य मानते हैं। सोरोकिन ने ऐतिहासिक घटनाओं को समान वर्गों में विभक्त कर उनके आंकड़ों की नियत निर्धारण की दृष्टि से परीक्षा की थी। यदि दार्शनिक मतवाद छोड़ दें तो वैज्ञानिक दृष्टि से इन सभी दृष्टियों को असिद्ध मानना पड़ेगा, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये कल्पनाएं सराहनीय हैं। इन पर पीछे विचार किया जाएगा। ऊपर से विवेचन से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इतिहास में विज्ञान की विशिष्ट प्रयोगात्मक स्थापना सत्यापन की विधि का कोई स्थान नहीं है। इतिहासकार का उद्देश्य इतिहास लिखना होता है, न कि इतिहास बनाना। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इतिहास में गणित सिद्ध तर्क प्रक्रिया का भी कोई स्थान नहीं है। कार्नप जैसे वैज्ञानिक और सेनियोवो जैसे इतिहासकार इस पर एक मत है कि इतिहास एक वर्णनात्मक विद्या है, न कि निगमनात्मक अथवा प्रयोगात्मक। दूसरे इस पद्धति भेद के साथ ही प्राकृतिक विज्ञानों और इतिहास में अपने विषय की ओर एक अन्य दृष्टि भेद भी है। विज्ञान नितांत वस्तुपरक होता है, मूल्यपरक नहीं। उसकी दृष्टि अपने विषय की ओर सर्वथा तटस्थ या मूल्य निरपेक्ष होती है। जैसा आगे प्रदर्शित किया जाएगा, इतिहास का ज्ञान मूल्य निरपेक्ष सामान्य नियमों में संग्रहित हो सके मूल्यान्वेषी मनुष्य के संबंधों और कार्यकलापों का विषयानुरूप वर्णन मूल्य निरपेक्ष ढंग से नहीं हो सकता। नृशंस हत्याकांड और अशोक का परोपकार दोनों क्या एक ही तटस्थता से वर्णित किए जा सकते हैं? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इतिहासकार को भी वैज्ञानिक के समान तटस्थ होकर मानव जीवन का अध्ययन करना चाहिए। जहां तक तटस्थता का अर्थ पक्षपात शून्यता और सत्य से आग्रह है, वहां तक तो ठीक है, किंतु क्या निरसंसता और करुणा में मूल्य और अनर्थ का विवेक करना पक्षपात कहा जा सकता है? वस्तुतः इस प्रकार का विवेक मूल्यबोध का ही नामांतर है। मानव मन सत्य पक्षपाती होता है, किंतु सत्य तटस्थ वस्तु मात्र नहीं होता। सत्य में रीत अथवा मूल्य भी संग्रहित होते हैं। मानव इतिहास का मूल्य निरपेक्ष केवल कार्य कारणात्मक वर्णन केवल समय से रद्द की गई बातों का ढेर मात्र होगा। मूल्यों का इतिहास मनुष्य की आत्मचेतना का उसकी आत्मसाधना का इतिहास होगा। मूल्य का ज्ञान वस्तु के ज्ञान से इस बात में भिन्न नहीं होता कि एक कल्पना मात्र एवं दूसरा सत्य ज्ञान है, बल्कि इस बात में कि मूल्य का ज्ञान किसी न किसी प्रकार के आत्मबोध की अपेक्षा रखता है, जबकि वस्तु का ज्ञान बोध मात्र की। दो इतिहासकार एक दृष्ट घटना का मौलिक विवरण तटस्थ और समान रूप से भले ही दे सके, वे इस घटना के अंतर्निहित मूल्यों के निरूपण में मूल्यांकन की प्रक्रिया को ताक पर नहीं रख सकते। जैसे वैज्ञानिक गणित के ज्ञान को लेकर प्रकृति के सम्मुख आता है, ऐसे ही इतिहासकार अपने अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्यों की सहायता से ही अपनी विषय वस्तु में निहित मूल्यों के ग्रहण और विश्लेषण में समर्थ होता है। यह स्मरणीय है कि मूल्यबोध या विवेक संस्कार मात्र नहीं हैं, वे बुद्धि के परिष्कार का अंग हैं। इतिहासकार के द्वारा मूल सिद्धांतों का उपयोग अनिवार्य भी है और विवेकात्मक भी है। यदि विज्ञान में तर्क मात्र का उपयोग होता है, विवेक का नहीं, तो यह विज्ञान के विषय वस्तु की जड़ स्तरीय हीनता सूचित करता है, न कि उसकी पद्धति की बौद्धिकता की विशेषता। इतिहासकार की दृष्टि न सिर्फ तथ्यनिष्ठ होती है बल्कि सत्यनिष्ठ भी होती है। वह वस्तु के साथ साथ मूल्य का अनुभव करता है। वह तर्क के साथ विवेक का उपयोग करता है और विवेक का यह उपयोग उसकी पद्धति की बौद्धिकता को चार चांद लगाता है। कुछ लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या इतिहास लेखन विज्ञान के समान विषयनिष्ठ या विषय प्रधान हो सकता है। यह प्रश्न वास्तव में ऊपर विवेचित तथ्यों के स्पष्ट ज्ञान के अभाव का परिणाम है। इतिहासकार अपनी मानवीय विषय वस्तु के विवेचन में अपने संस्कारों को सर्वथा छोड़ नहीं पाता, किंतु क्या वैज्ञानिक पद्धति के विवेचन में मानवीय सहज संस्कारों को छोड़ पाता है। कार्य कारण सिद्धांत को ही लीजिए। ह्यूम ने निश्चयात्मक रूप से यह सिद्ध किया है कि कार्य कारण सिद्धांत यह सहज संस्कार मात्र है। कांट का उत्तर इस संदर्भ में यही सिद्ध करता है कि इन संस्कारों से बने हुए मानवीय मन के लिए उसके द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक नियम व्यवहार में झूठे नहीं साबित होंगे। कांट का उत्तर यह भी सिद्ध करता है कि विज्ञान के नियम वस्तुनिष्ठ न होकर प्रतिभा सनिष्ठ होते हैं। वस्तुतः सभी ज्ञान विभिन्न कल्पनाओं के अनुसार प्रतीतियों की योजना होते हैं। ज्ञान के विभिन्न संदर्भों में ये कल्पनाएं भिन्न होती हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आचार शास्त्रीय अथवा साहित्य शास्त्रीय चर्चा में उनकी अपनी अपनी पूर्वावश्यकताओं से युक्त कल्पनाओं का प्रयोग उन चर्चा को कपोल कल्पना बना देता है। प्रत्येक क्षेत्र की प्रतीतियों से ज्ञान को मथने के लिए अलग अलग मूल कल्पनाओं की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक वस्तु वैसे ही कल्पना है जैसे मूल, दोनों ही परामर्श से बाहर प्रतीत संलग्न हैं। और फिर इतिहासकार संस्कारों को सर्वथा न छोड़ सके, किंतु सत्य के आग्रह से उनके ऊपर अवश्य उठाना चाहता है। यदि संस्कार का अर्थ मानस का सार्वभौमिक और आवश्यक प्रवृत्तियां न हो, यदि संस्कार केवल इतिहासकार की निजी मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं हो, तो निश्चय ही बिना उनसे ऊपर विवेक के स्तर पर उठे इतिहासकार सही अर्थ में इतिहासकार नहीं बन सकता। उसके लिए यह प्रक्रिया वैज्ञानिक की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म कठिनाइयों से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि उसका विषय मानवीय है, किंतु यह कठिनाई दोनों के लिए रहती है। विज्ञान का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि अविवेचित संस्कारों का बल विज्ञान की प्रगति को भी निरंतर रोकता रहा है। विवेक का उदय ही संस्कारों से मुक्ति दिलाता है, और विवेक इतिहास की दृष्टि को वैयक्तिक आग्रह की दृष्टि नहीं कहा जा सकता। यथार्थ की आग्रह में इतिहासकार वैज्ञानिक का समकक्ष है। वस्तु मात्र से ऊपर मूल्यात्मक सत्य के प्रतिवेद से वह वैज्ञानिक के ऊपर है। वैज्ञानिक एवं इतिहास में सादृश्यता। वैज्ञानिक और इतिहासकार की मूल समानता दोनों का यथार्थ पर आग्रह है। ज्ञान यथार्थ है और अयथार्थ इसका निर्णय प्रमाणों से होता है। इतिहास भी विज्ञान के समान प्रमाणाश्रित ज्ञान है। यही इतिहास की वैज्ञानिकता है, किंतु प्रमाण प्रयोग के विस्तार में क्षेत्रिक भेद होना स्वाभाविक ही है। समाज विज्ञान और इतिहास। समाज विज्ञान से इतिहास का क्या संबंध है? जहां पुराने युग में इतिहास को साहित्य की शाखा माना जाता था, आजकल अधिकांश इतिहासकार इसे एक समाज विज्ञान मानते हैं। समाज विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के अनुकरण में प्रत्यक्ष विधियों से समान नियम निकालना चाहता है, जहां तक यह संभव है। इस प्रकार के सामाजिक नियम इतिहास की सहायक सामग्री बन ही जाएंगे, किंतु समाज विज्ञान का यह प्रयास कहां तक सफल हो सकता है, यही संदिग्ध है। अर्थशास्त्र को छोड़कर किसी और क्षेत्र में समाज विज्ञान की ऐसी प्रगति नहीं देखी जाती जिससे उसके प्रारंभिक इश्तहारों को सच्चा माना जाए। और इसका एक यथार्थ कारण है, वह है मानव जीवन और स्वभाव की नितांत और मौलिक ऐतिहासिकता। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों का स्वभाव सदा एक सा और स्थिर है, या कि उनके जीवन और संबंध सब देश काल में उन्हीं अच्छेद परमाणुओं के विश्लेष्य संघात हैं। समूचा मानव जीवन एक अंतर्ग्रथित ऐतिहासिक सांस्कृतिक सूत्र से संचालित होता है। जैसे अब नवीनतर और निपुण आलोचक यह समझते हैं कि पात्रों के चरित्र उस नाटक में ही सिद्ध और विदित होते हैं, वे बाहर से नाटक के ढांचे के स्थिर स्तंभ नहीं होते। ऐसे ही बीको आदि ने यह स्पष्ट किया है कि मानव स्वभाव ही इतिहास निर्मित होता है। प्रचलित समाज विज्ञान मानव जीवन और स्वभाव की अंतर्नियामक ऐतिहासिक प्रक्रिया की ओर आंखें बंद करके सीधे प्राकृतिक आधारों पर मनुष्य का निरूपण करना चाहता है, मानो मनुष्य की कुटस्थ और स्थिर सांचे हों जो कि पारमानविक सांचों जैसे परिस्थितियों में ही सदा विचरते रहते हैं। यदि वास्तविक समाज विज्ञान संभव है तो वह ऐतिहासिक ही होगा। प्रचलित समाज विज्ञान इतिहास के लिए उपयोज्य है, जैसे संगत रास का काम वास्तु के रचनाकार के लिए। सामान्य जीवन में इतिहास एक स्मृति के रूप में रहता है। जब कोई अपना या किसी और का पिछला इतिहास कहता है तो वह पुरानी घटनाओं की अपनी स्मृति दोहराता है। कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास मूलतः आप बीती की प्रत्यवेक्षात्मक स्मृति है, जिसका प्रयोजन आंतरिक विशुद्धि है। पिछले दिनों को याद करते हुए हम अपने आप को समय की दूरी से ठीक पहचान पाते हैं, किंतु इतिहास में तो किसी की आप बीती नहीं। इतिहास को जग बीती कहा जाए तो अधिक समीचीन होगा, और जग बीती किसी की स्मृति नहीं होती। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि इतिहासकार कल्पना के द्वारा जग बीती को ही एक विराट आप बीती के रूप में रचता है। इस प्रकार की निर्वैयक्तिक स्मृति अथवा कुछ पुनर्निर्माणात्मक कल्पना सामुदायिक चेतना के लिए वही कार्य करती है जो निजी स्मृति और प्रत्यवेक्षा व्यक्ति के स्तर पर। वस्तुतः बात यह है कि कोई भी ज्ञान अपनी उत्पत्ति के बाद स्मृति का रूप धारण कर सकता है। मुख्य अथवा औपचारिक अर्थ में अपने से संबंध रखने वाली घटनाओं का ज्ञान अनायास अभ्यास से निजी स्मृति के समान प्रतीत हो सकता है। यद्यपि वह स्मृत ज्ञान ही रहेगा, या वह भास से अभिलग स्मृति कभी भी नहीं बनेगा। मुझे मेरे पिता बताते हैं कि मैंने बचपन में अमुक बात की थी। मैं उनकी कही बात को स्वीकार कर लेता हूं और यह मानता हूं कि मैंने बचपन में अमुक बात की थी। जिस समय मैंने उनसे सुनकर यह विश्वास प्राप्त किया, उस समय मुझे शब्द ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मुझे उस उपलब्ध ज्ञान की स्मृति है, किंतु यह मेरे बचपन की स्मृति नहीं। मैं जब अपना पिछला इतिहास जानना चाहता हूँ तो अपनी स्मृति पर ही भरोसा नहीं करता, अपनी स्मृति की परीक्षा करता हूँ और उसकी अन्य प्रमाणों से पुष्टि अथवा असंगति पर विचार करता हूँ। दूसरों से सुनी बात के विषय में भी यही प्रक्रिया लागू होती है। ऐतिहासिक ज्ञान का उदय स्मृति से अथवा कल्पना से नहीं होता, बल्कि प्रमाण से और परीक्षा पूर्वक होता है। इस प्रकार ऐतिहासिक ज्ञान प्रमाण आश्रित आलोचनात्मक ज्ञान है। इस ज्ञान का मुख्य रूप संभावनात्मक अनुमान है। संभावना इस प्रसंग में मूलतः सांख्यिकीय न होकर गुणात्मक है। इस प्रकार के संभावनात्मक और अनुमानिक ज्ञान का एक सुविदित दृष्टांत न्यायालयों की कार्यावली में मिलता है। इतिहासकार मानो एक जासूस की तरह सबूतों को खोजकर इकट्ठा करता है। गवाही, कागजात और संबंध सामग्री के रूप में ये सबूत न्यायालय में पेश किए जाते हैं, जहां पक्ष और प्रतिपक्ष के वकील जिरह से गवाहों के चरित्र की विश्वसनीयता, उनके चश्मदीद बनने के अवसर की संभावना, उनके कथनों की संगति, विभिन्न सबूतों की आपस में संगति आदि को परखते हैं। इस प्रख की न्यायानुकूलता पर न्यायाध्यक्ष के विचार करने के बाद निर्णय पर पहुंचता है कि वास्तव में क्या हुआ। न्यायाध्यक्ष के लिए वृत्तांत प्रोच होता है और वह उसके संबंध में निर्णय पर उपलब्ध प्रमाणों की परीक्षा के अनंतर एक ऐसे अनुमान के द्वारा पहुंचता है जिसकी निर्दोषता बहुधा कठोर तर्क सम्मत न होकर संभाव्य मात्र होती है। जहां अपने निर्णय को निसंदेह कहते हैं, वहां भी वे अपने अनुमान में मानवीय आचरण और मनोविज्ञान के संबंध में बहुत सी ऐसी व्याप्तियां स्वीकार करते हैं जो प्रचलित एवं संभाव्य होते हुए भी सर्वथा निरुपाधिक नहीं कही जा सकती। तथापि यह ध्यान देने की बात है कि संभावनात्मक अनुमान के अंदर भी संदिग्ध और असंदिग्ध निष्कर्षों का भेद न्यायालय में बराबर किया जाता है। इतिहास डैश ज्ञान पद्धति के साधन। इतिहासकार की ज्ञान पद्धति कुछ इसी प्रकार की होती है। उसकी जानकारी के तीन साधन होते हैं, साक्ष्य, दस्तावेज और भौतिक अवशेष। साक्ष्य का अर्थ है साक्षी का वचन। साक्षी का सामान्यतः अर्थ होता है प्रत्यक्षदर्शी। यहाँ प्रत्यक्ष को एक व्यापक अर्थ में लेना होगा, केवल आज के व्यवहारवादी मनोविज्ञान के अनुसार ही नहीं, क्योंकि इतिहासकार के लिए व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों और विचारों का साक्षी हो सकता है। यही नहीं, वह अपने सुपरिचित व्यक्तियों की कम से कम स्थल मनोवृत्तियां का भी उन स्थितियों में साक्षी हो सकता है जिनमें वह उनकी प्रत्यक्ष गतिविधियों का साक्षी है। न्यायालय में अप्रत्यक्ष विषयों, स्वयं न प्रत्यक्ष किए हुए विषयों एवं दूसरों से सुने हुए विषयों पर गवाही स्वीकार नहीं की जाती, किंतु वकील और न्यायाध्यक्ष दोनों ही गवाह के प्रत्यक्ष कथन के आधार पर स्वयं अप्रत्यक्ष का अनुमान करते हैं। इतिहासकार के सामने उसके मूल साक्षी विद्यमान नहीं होते। वह उनसे जिरह के द्वारा यह नहीं पता चल सकता कि उन्होंने कितना स्वयं प्रत्यक्ष किया और कहाँ तक उस प्रत्यक्ष से संबद्ध अप्रत्यक्ष बातों का उसके द्वारा किया हुआ अनुमान न्यायाचित है। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष दृष्ट अथवा साक्षात्कृत का इतिहास के लिए यही अर्थ हो सकता है विश्वसनीय रूप से ज्ञात। इतिहास के साक्षी पिछली घटनाओं के समान ही अतीतगत अनुपस्थित होते हैं। उनके उपलब्ध वचन एक प्रकार के आप्त वचन अथवा जहां स्वयं साक्षियों के नाम और पृथक व्यक्तित्व अविदित हैं, एक प्रकार के आगम मात्र होते हैं। उदाहरण के लिए मेगास्थनीज अथवा युवान च्वांग के विवरण ऐतिहासिक साक्ष्य की कोटि में आते हैं, क्योंकि वे अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लिखित बताते हैं जो कि अपनी वर्णित सामग्री की जानकारी का दावा करते हैं। पुरानी परिभाषा के अनुसार उनके विवरणों से उपलब्ध ज्ञान आप्त वचन स्वरूप शब्द प्रमाण से गृहित ज्ञान होगा। दूसरी ओर पुराणों में लिखित राजकीय वंशावली यदि विश्वसनीय सिद्ध होती है तो वह भी इसी प्रकार से जानी हुई कही जाएगी जैसे आगम रूप शब्द से ज्ञान होता है। यह स्मरणीय है कि इतिहासकार साक्ष्य का दावा करने वाले लेखों की ओर एक सत्य जिज्ञासु की भांति परीक्षा की दृष्टि रखता है जो किसी लेखक को अथवा किसी परंपरा को सिर्फ उसके दावे से ही विश्वसनीय नहीं मानती। यथासंभव वह उन लेखकों के चरित्र, विवेक, जानकारी के अवसर और साधन, उनके लिखने के उद्देश्य, उनकी यथार्थ कथन की योग्यता और शैली आदि का विवेचन करता है। ऐसे ही वह नामहीन परंपराओं के उद्गम, विकास, प्रक्षेप आदि का विश्लेषण करता है। इतने से ही यह स्पष्ट होगा कि इतिहासकार बहुत से ऐसे साक्ष्य का भी सहारा लेता है जो सामान्यतः कचहरी में स्वीकार नहीं हो सकेगा। सेनी योबो का कहना है कि जहां कचहरी में गवाह के चरित्र को तब तक विश्वसनीय मान लिया जाता है जब तक वह किसी विशेष कारण से अधिथिप्त न हो, किंतु इतिहासकार की परीक्षा विधि अधिक कठोर होती है और वह किसी साक्षी को बिना उसके चरित्र की जांच पड़ताल किए विश्वसनीय नहीं मानता। इस स्थल पर कहना आवश्यक है कि परीक्षा की यह कट्टरता आधुनिक इतिहास में अधिक लागू होती है, पूर्ववर्ती इतिहास में कम। किंतु इस कमी की पूर्ति के लिए प्राचीन और एक सीमा तक मध्यकालीन इतिहास के लेखन में अनेक प्रमाणों की परस्पर संपुष्टि पर विशेष ध्यान दिया जाता है और साथ ही उस प्रकार की बारीक तथ्यों को स्वीकृत आधुनिक इतिहास की अपेक्षा बहुत कम दी जाती है। तथ्यों की स्वीकृति आधुनिक इतिहास की अपेक्षा बहुत कम दी जाती है। आधुनिक इतिहास के लेखन में परीक्षा के अंतर विश्वसनीय माने हुए साक्ष्य के आधार पर बहुत से ऐसे घटना विस्तार तथ्य के रूप में स्वीकृत होते हैं जिनके समानांतर कथन प्राचीन इतिहास में उसी मात्रा में विवेचनीय साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किए जाते। ऐसे ही नामहीन परंपराओं अथवा अनुश्रुतियों का उपयोग न कचहरी में होता है न अर्वाचीन इतिहास के लेखन में। प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार ग्रोट ने अपने ग्रीस का इतिहास में सैकड़ों पृष्ठों के विस्तार से प्राचीन ग्रीक परंपराओं को अश्रद्धेय घोषित किया, किंतु उसके बाद ही पुरातात्विक खोजों से यह सिद्ध हो गया कि इन पुरानी परंपराओं में तथ्य की कुछ स्मृति निसंदेह रूप में से विद्वान थी। ऐसे ही चीन के इतिहास के प्रति भी पहले सांग वंश के राजाओं के संबंध में पुरानी चीनी परंपरा को कपोल कल्पित माना जाता था, किंतु होना से उत्कीर्ण हड्डियों के मिलने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि इस परंपरा में बहुत से ऐतिहासिक नाम संरक्षित थे। पुराणों की परंपरा के विषय में विद्वानों में क्रमशः मत परिवर्तन हुआ है। हमने ऊपर इतिहासोपयोगी साक्ष्य की तुलना आप्तवचन एवं आगम से की है। इन शब्दों को हमने क्रमशः विश्वसनीय पुरुष के वचन और प्राचीन काल में सुरक्षित परंपरा के अर्थ में किया है। विश्वसनीय पुरुष के वचन और प्राचीन काल में सुरक्षित परंपरा के अर्थ में किया है। इन बात का स्मरण रोचक होगा कि मीमांसक गण वेद की प्रमाणिकता को सिद्ध करने के लिए यह तर्क देते थे कि वेद ऐसी परंपरा है जो कि अविच्छिन्न है, अनादि है और किसी पुरुष के द्वारा परिवर्तित नहीं की गई है और इसीलिए पुरुष संभाव्य राग द्वेष से अछूती है। ऐतिहासिक साक्ष्य इस अर्थ में आप्तवचन नहीं है कि आप्तपुरुष कोई मनुष्योत्तर सत्ता हो अथवा इस अर्थ में कि व्यक्तव्य स्वरूपता अप्रोच विषयक हो, किंतु यह स्मरणीय है कि शब्द प्रमाण के प्रत्यय में अलौकिकता अथवा अदृष्टार्थता को आवश्यक स्थान नहीं है। शब्द प्रमाण का अर्थ है सही जानकारी देने वाला शब्द। चूंकि इतिहासकार शब्द को अपौरुषेय नहीं मानता, उसके लिए शब्द से ही जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब वह जानकार तथा विश्वसनीय व्यक्ति का कथन हो। इसी को साक्ष्य अथवा गवाही कहते हैं। नितांत अदृष्ट अर्थों की जानकारी का दावा इतिहास में साक्ष्य के रूप में स्वीकृत न होकर तथा कथित साक्षी के विश्वास के रूप में ही स्वीकृत होता है। मानसिक भाव, अभिप्राय, विचार आदि दूसरे के द्वारा दृष्ट न होकर अनुमित ही होते हैं। वे इस अर्थ में परोक्ष नहीं हैं कि व्यक्ति अपने अंदर जानता है और दूसरे में समानता के आधार पर पहचानता है। कैम्ब्रिज मॉडर्न हिस्ट्री के प्रथम संस्करण के प्राकथन में विशेष क्रेटन ने बाहरी कार्यों के पीछे की मनोवृत्तियों को ऐतिहासिक साक्ष्य के प्रमाणित करने की कठिनाई पर टिप्पणी की है। बाह्य कर्मात्मक घटना सुप्रतिपाद्य है, किंतु उसकी कारणभूत सूक्ष्म मानसिक घटना कथचित अनुमेय होते हुए भी कठोर प्रमाण परीक्षा की दृष्टि से सदैव दुष्प्रतिपाद्य ही रह जाएंगी। ऐतिहासिक साक्ष्य। रांके से पहले इतिहास लेखन मुख्यतः पुराने इतिहासकारों, वार्ताकारों, जीवन चरित्रों पर आधारित होता था। हेरोडोटस ने स्वयं घूम घाम कर बहुत सी जानकारी इकट्ठी की थी। यदि उसकी रचना वार्ताकार की न होकर इतिहासकार की है तो वह उसके द्वारा उपयुक्त साक्ष्य के भिन्न होने के कारण उतना नहीं है जितना कि उस साक्ष्य के आलोचना पूर्वक उपयोग के कारण। इतिहास की रचना पद्धति में हेरोडोटस के द्वारा की गई इस क्रांति के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण क्रांति रांके की ही माननी चाहिए, क्योंकि रांके ने संबंधित कागजात या शासन पत्रों की खोज को इतिहास के लिए एक अतिरिक्त और अधिक महत्वपूर्ण साधन के रूप में प्रस्तुत किया। संबंधित कागजात या दस्तावेज उभय पत्रक होते हैं जो कि मूल घटना के प्रवर्तन के साथ उसके अंतरंग रूप से प्रवृत्त हुए हों। बहुधा ये कागजात अपनी उत्पत्ति के समय गुप्त माने जाते हैं। इनकी प्रामाणिकता इस बात से विशेष रूप से होती है कि घटना के विषय में ये न तो संबंधित व्यक्ति की बाहरी सूचना देते हैं, न बाहरी व्यक्ति की तत्संबंधी सूचना, न किसी प्रकार की घटना के संबंध में पीछे किसी विशेष अभिप्राय से दी हुई सूचना। सरकारी कारोबार और नीतियों के संबंध में सरकारी अधिकारियों के जनता के लिए दिए गए वक्तव्य संबंधित लोगों की दी गई बाहरी सूचना है। समाचार पत्रों में प्रकाशित विवरण और टिप्पणियां बाहरी लोगों की तत्संबंधी सूचना है। सरकारी अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के पीछे दिए हुए विवरण, जैसे बिस्मार्क की अपनी जीवनी अथवा मौलाना आजाद की जीवन संबंधित व्यक्तियों की परिवर्ती और साभिप्राय सूचना है। यह सब वक्तव्य विभिन्न प्रकार की गवाही की कोटि में आते हैं, किंतु कागजात की कोटि में नहीं। सरकार के द्वारा प्रकाशित गजेट की विज्ञप्ति अथवा निर्णय लेने के सिलसिले में अधिकारियों के बीच सरकारी पत्र व्यवहार एवं संबंधित पत्रावलियों में अंकित विवरण, टिप्पणियां एवं आदेश संबंधित कागजात या दस्तावेज कहे जाते हैं। अर्वाचीन इतिहास की रचना के लिए इस प्रकार के साधन का महत्व सर्वाधिक है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में लगभग 17वीं शताब्दी इस प्रकार के कागजात विशेष रूप से उपलब्ध होने लगते हैं। हैदराबाद के अभिलेखगार में संरक्षित शाहजहां के समय के कुछ कागजात उदाहरण के रूप में उल्लेख हैं। इस प्रकार के कागजात की भी असलियत की परीक्षा सावधानी से करनी पड़ती है, विशेषतः यदि ये पुराने हैं, क्योंकि पुराने दस्तावेज कभी विशेष अभिप्राय से जाली भी बनाए जा सकते हैं। दान पत्र, पट्टे आदि स्पष्ट कारणों से जाली बनाए जा सकते हैं। समुद्रगुप्त के तथा कथित गया और नालंदा के ताम्रपत्र इसके दृष्टांत हैं। पश्चिमी इतिहास में तथा कथित कांस्टेंटाइन के दान पत्र को जाली सिद्ध करना ऐतिहासिक पत्र परीक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक विजय मानी जाती है। दस्तावेज की परीक्षा एक पृथक विद्या ही है जिसे डिप्लोमेटिक कहते हैं। इसमें पुराने शासन पत्रों को शैली, मुद्रा आदि की विशेषता का अध्ययन किया जाता है। शासन पत्रों और अन्य सरकारी कागजात अब अभिलेखागारों में विशेष रूप से संग्रहित होने लगे हैं।